मैंने अपनी झोली में जितना संसार भरा था वो लौटा दिया है सारा। लगता है नया जन्म हुआ है। एक सूर्य वस्त्र लिपटा है मेरे चारों ओर। हाथ में स्पर्श है किसी की पवित्रता का और आंख में महासागर के अतल जल का बोध ठिठका है। पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर सुनीता जैन जी ने इस कविता में बिल्कुल ठीक कहा। सच में कुछ लोग जन्म लेते हैं और पूरा जीवन एक ही तरह से जी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इस जीवन में ही नया जन्म लेते हैं और एक ही जीवन कई बार जीते हैं। ऐसी ही शख्सियत है डॉक्टर शीला डागा जी, जिनका व्यक्तित्व ये सिखाता है कि प्रतिकूलताएं, परेशानियां और दुख भी हमें कुछ न कुछ सीख देने वाले ही होते हैं। आपने विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी अपनी शिक्षा और ज्ञान के द्वारा अलग मुकाम हासिल किया और खुद के उसूल तय किए और जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के उपक्रम किए। उनसे बात करके मुझे ये विश्वास हो गया कि यूं ही नहीं कोई क्रांतिकारी व्यक्तित्व बन जाता। परिस्थितियों से हार कर रोते रहने की जगह आपने खुलकर उन परिस्थितियों को ही अपने तरीके से जीना शुरू किया और अपने बूते पर अपनी धरती और अपना आसमान तलाश किया। उनसे मिलकर, उनसे बात करके एक नई ऊर्जा, एक जोश का संचार होता है। तो आइए दोस्तों, डॉक्टर शीला डागा जी से एक संवाद करते हैं।
नमस्ते मैम, चुभन के पटल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है।
धन्यवाद।
और मैम कैसे हो आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मैम आज आपकी शख्सियत के ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपके आरंभिक जीवन से ही मैं आरंभ करना चाहूंगी। आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ से हुई, बचपन कहाँ और कैसे बीता, कुछ हमें बताएं।
मैं 5 साल की थी
जी
तब गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी तो अब है
जी,
लेकिन वैसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और उसका सेकेंड कैंपस देहरादून में है
जी जी,
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय
जी।
तो यहाँ गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में है वो तो लड़कों का था
जी,
आज भी लड़कों का ही है
जी जी,
और जो देहरादून में था वो लड़कियों का।
अच्छा।
तो क्योंकि काठगोदाम में मेरे पिताजी रहते थे, वहां पे कोई शिक्षा का प्रबंध नहीं था, उनको लड़कियों को पढ़ाने का बड़ा शौक था, तो उन्होंने मुझे यहाँ गुरुकुल में दाखिल करवा दिया था। मैं 5 साल की थी।
अच्छा।
और वहाँ 6 साल से कम का नहीं लेते थे, तो मेरे पिताजी ने मेरी उम्र, क्योंकि मैं काफी अच्छी मोटी भी थी और बोल्ड भी थी, तो उन्होंने मुझे मेरी 6 साल की उम्र लिखवा के और मुझे दाखिल करवा दिया था।
यानी शुरुआत ही आपकी क्रांतिकारी कदम से हो गई।
हाँ जी। और उसके बाद बीए तक मैं वहीं रही, वहीं पढ़ी
जी,
वहीं की स्नातिका विद्यालंकार उपाधि मिलती थी।
अच्छा।
वहीं की स्नातिका
जी।
उसके बाद मैंने एमए जबरदस्ती, मेरे पिताजी चाहते नहीं थे अब और कहीं बाहर भेजना, कहते थे घर के काम सीखो, लेकिन मुझे ये लगता था, मैंने जो अपने घर में महिलाओं के साथ उत्पीड़न देखा था, उनको किस तरह उनका अनादर होता था
जी जी,
तो मुझे लगा कि मैं ऐसी कोई स्थिति सहन नहीं करूंगी, और मैंने जब जिद की कि मैं तो एमए करूंगी ही करूंगी
जी,
तो प्राइवेट या आगरा यूनिवर्सिटी से
जी,
तो लेकिन एमए कर लिया। तो मैं बीए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, स्वर्ण पदक मिला हुआ था, तो मुझे कोई चिंता तो थी नहीं, और गुरुकुल की पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था, बड़ा
जी,
तो एमए में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और किसी विषय में कर नहीं सकती थी, प्राइवेट में तो संस्कृत नहीं कर दिया।
अच्छा।
और 20 साल बाद पता चला कि आगरा यूनिवर्सिटी में, यद्यपि मैंने प्राइवेट पढ़ा था और ऐसी एग्जाम दिया था, पर मेरा तीसरा या चौथे नंबर पे मेरे नंबर थे, मार्क्स थे।
तीसरा चौथे नंबर पर क्या मैम?
नहीं मतलब पोजीशन अगर देते, वो प्राइवेट को देते नहीं थे ना।
अच्छा अच्छा। तो आपकी तीसरे या चौथे पर थी जी जी।
हाँ, सिक्स 7% मार्क्स थे।
वाह, उस समय इतने मार्क्स आते नहीं थे मैम आप लोग के समय में।
जी जी। और जो यहाँ पे देहरादून ही सेंटर था मेरा, तो जो ये भी कॉलेज है वहाँ पर, वहाँ के जो रेगुलर स्टूडेंट थे उनके उनमें सबसे उनमें हाईएस्ट नंबर 63 था और मेरा 67 था।
जी जी,
ये इतना फर्क था
जी
पढ़ाई में। संस्कृत मेरी शुरू से बहुत अच्छी थी।
जी जी।
फिर शादी हो गई 1964 में।
जी।
और फिर मैंने बस ससुराल वहीं रही। और
ससुराल आपका मैम कहाँ था?
ससुराल राजस्थान अलवर।
जी।
तो वहां से वहां रही, वो शादी भी गलत ही तरीके से गली हुई थी, गलत व्यक्ति के साथ हुई, गलत ही था जो भी कुछ था वो तो। लेकिन जैसे तैसे 4 साल बाद दो बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, और मुझे लगा कि अभी मैं तो पालना ही है। तो 18 साल तक जब बच्चे 13-14 साल के हो गए, उसके बाद 18 साल बाद मैं मेरी परिस्थितियां इतनी विकट हो गई कि मेरी बेटी ही उस समय 10वीं में पढ़ रही थी और उसने कहा माँ यहाँ से चलो, आप जैसे रखोगी रह लूंगी लेकिन आप यहाँ से निकलो।
जी।
तो मैं घर छोड़ के और दिल्ली आ गई।
जी।
यानी दिल्ली के महासमुद्र में कूदी। मेरे पास केवल 1,000 रुपए थे और कुछ नहीं था।
अपने बच्चों को लेकर?
बच्चों को नहीं लिया उस समय, बच्चों को असल में मैं लेके तो आ रही थी, बेटी को, बेटा मेरा हॉस्टल में पढ़ रहा था।
जी।
वो मेरा जो पति था वो उसमें पढ़ा रहा था। पर क्या हुआ कि बेटी का 10वीं का था और मुझे जब मैं जिस दिन निकलने लगी
जी,
उस दिन मुझे ये ध्यान आया कि अरे ये तो 10वीं क्लास में है, इसका कहाँ एडमिशन करवाऊंगी।
जी।
पर मेरी, क्योंकि मेरी देवरानियों से मेरे संबंध बहुत ही मधुर थे।
अच्छा।
तो उन्होंने कहा कि भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग संभाल देंगे इसको, 1 साल की बात है बस। फिर उसे भी छोड़ के शुरू में मैं ऐसे ही आई।
जी जी।
18 साल बाद।
जी।
और वहां आई तो जैसे तैसे ठिकाना तो एक मिल गया। मतलब मैंने पहले भी मैं दिल्ली आती जाती थी तो मैंने देखा हुआ था, पर दिल्ली के रास्तों का मुझे कुछ नहीं पता।
जी।
और मैंने सोचा था कि मैं पहले कि मैं बीएड कर लूंगी।
जी।
लेकिन जब मैं वहां पहुंची जुलाई में तो वो डेट निकल चुकी थी।
जी।
तो बस फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैं पीएचडी कर सकती हूँ, मेरे नंबर तो बहुत अच्छे हैं।
जी।
तो मैंने अपने, मेरा एक मौसी का लड़का था, मैंने उससे कहा मुझे जरा यूनिवर्सिटी दिखा दो तुम एक बार।
जी।
तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची, वहां बात की, उन्होंने कहा कि पहले एमफिल करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का? वो बोले कि मार्क्स कितने हैं? मैंने कहा 67% की, आपका तो हो जाएगा।
जी।
तो फिर एमफिल में एडमिशन लिया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल किया और पीएचडी।
जी जी।
ये पूरी पढ़ाई ये है मेरी।
तो मैं जी
पीएचडी करते हुए
जी,
क्योंकि मुझे इंग्लिश कम आती थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का प्रयोग बहुत होता था।
जी जी।
तो मैंने पहले इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन का एक कोर्स, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया।
जी।
और उसके बाद फिर मैंने जर्मन लैंग्वेज में एडमिशन लिया।
अच्छा।
तो ये दोनों कुछ कुछ महीने के कोर्सेज थे, ये दोनों भी कर लिए।
जी। तो जैसा मैम आपने बताया कि आपने संस्कृत को चुना शुरू से, तो आपने बताया कि आप काठगोदाम से हैं, तो क्या आप पहाड़ से ही हैं?
नहीं, पहाड़ से नहीं हूँ। वैसे मेरे पिताजी पहाड़ से नहीं थे।
जी।
वो अमरोहा मुरादाबाद।
ओ, उत्तर प्रदेश। जी जी।
उत्तर प्रदेश से थे। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था।
जी जी, एक ही था।
तो लेकिन मेरे पिताजी ने काम बहुत छोटी उम्र से, 16-17 साल की उम्र से उन्होंने काठगोदाम में काम करना शुरू कर दिया।
अच्छा।
तो बस मेरी माँ मुझे जन्म दे के वहाँ और फिर यहाँ आ गए काठगोदाम। तो पली काठगोदाम ही।
अच्छा अच्छा।
बस ये समझ लीजिए कि वो जन्म के बाद जो थोड़े से दिन होते हैं, मेरी माँ को जितने दिन मेरी दादी ने रखा होगा उतने दिन तो जब रहना पड़ा उन्हें, उसके बाद हुआ।
जी। तो आपने जैसा कहा कि महिलाओं की स्थिति आपने अपने परिवार में देखकर ये कदम उठाया कि आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो क्या आप बताना चाहेंगे मैम कि किस तरह की परिस्थितियां थी महिलाओं के ऊपर?
कैसे? ये तो ऐसा था कि मैं अक्सर देखती थी कि मेरी माँ को मेरे पिताजी बड़ी बुरी तरह डांट देते थे
जी,
तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो
जी जी।
छोटी सी थी, मैं छोटी ही थी तब से ही, मतलब 10-12 साल की रही तब से मुझे याद है कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था
जी।
और ऐसे ही एक किसी फंक्शन में मैं आई तो मैंने देखा कि मेरे मामा ने मेरी मामी को बड़ी बुरी तरह सब औरतों के बीच में डांट दिया
जी,
और वो भाषा भी उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं, मुझे मतलब आप ये सोचिए कि मैं उस समय थी 16 साल की
जी,
तो मुझे रोना आ गया
जी जी।
और मैं रो पड़ी और मैंने सबसे ये कहा, क्योंकि हम गुरुकुल से मैं आई हुई थी अपने कॉलेज से, तो मैंने ये बहाना नहीं बनाया, मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे ये बात बुरी लगी है। मैंने कहा मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, मुझे तो वापस जाना है
जी जी।
बस मतलब ये मेरी मानसिकता जो थी वो इस तरह की थी। मैंने अपने और भी देखा था इधर उधर सत्य का
जी बिल्कुल।
तो मैं देखती थी औरतों की हालत बड़ी खराब है, हर जगह औरतों को हर समय बेइज्जती सहनी पड़ती है, बहुत अनादर सहना पड़ता है। तो मैं सोचती थी कि मैं ये अनादर नहीं सहूंगी, और पुरुष सोचते हैं कि उनके बिना औरतों का काम नहीं चलता, तो मैं सोचती थी कि मैं दिखा, अगर जरूर कभी ऐसी कोई स्थिति मेरे साथ आई तो मैं दिखा दूंगी कि पुरुष के बिना भी औरत की जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती
जी जी।
तो ये रहा
जी मैम। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब औरतें इस तरह से सोचती हैं, पुरुषों का विरोध करती हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि बचपन में कुछ बातें हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं जिनका असर बिल्कुल हमारे अंदर तक चला जाता है, और उसका फिर पूरा व्यक्तित्व हमारा प्रभावित होता है मैम उससे।
हाँ, कुछ बच्चे तो ऐसे होते ही हैं सेंसिटिव
जी बिल्कुल।
भावना प्रवण होंगे आप, और आपको ये चीजें, आप स्वाभिमानी होंगे तो आपको बुरी लगेंगी, खराब लगेंगी,
बिल्कुल
गलत लगेंगी, आपके दिल को छूती हैं वो,
बिल्कुल छूती हैं, और उससे फिर हमारा पूरा व्यक्तित्व ही प्रभावित होता है मैम। फिर जैसा आपने कहा कि अकेले रहने की और खुद से कुछ करने की आपके अंदर जो इच्छा जागृत हुई, तो उसके पीछे कारण तो यही सब रहे ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं
जी। सुनिए
जी जी,
वो मैंने तो तब तो केवल इतना ही सोचा था
जी,
मैं ये अनादर नहीं सहूंगी
जी जी।
लेकिन मेरी शादी हुई, उस दो व्यक्ति शादी के बहुत, शादी के लिए बहुत योग्य नहीं था
जी,
इससे मेरी शादी हुई
जी जी।
तो वो मेरे से शादी की पहली रात से वो बोला ही नहीं
जी,
मेरे से दूर भागता रहा
जी।
तो लेकिन मैं कोशिश करती रही करती रही, मुझे उस समय तो अकल थी नहीं कुछ भी
जी,
ना कोई साइकोलॉजी जानती थी ना कुछ जानती थी, तो जैसा भी चलता रहा। पर स्वाभिमानी थी तो कभी किसी से ये नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है
जी।
और सबके सामने मैं उतना ही, मैं हंसती बहुत हूँ, और हंसने के लिए मैं बहुत प्रसिद्ध रही हूँ
जी,
हर जगह जहाँ भी कहीं जाती हूँ तो मेरी हंसी के लिए मुझे सब याद करते
जी।
तो तब भी मैं मुस्कुराती रही, और वैसे ही मजाक, हंसी मजाक सब करती रही, सारे काम करती रही, कोई कमी नहीं किसी तरह की, किसी को पता नहीं चल सकता था कि मेरे साथ क्या स्थितियां हैं
जी जी।
और मेरे ऊपर वो हर तरह से, उसको ये वो शक ही करता रहता था, ये मुझे जहर दे देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, क्योंकि उसको अपने डर थे
जी।
तो ऐसे ही मैं उन्हीं पर विकट परिस्थितियों में, और बिल्कुल नॉर्मल सामान्य रूप से बह करके जिंदगी जीती रही, कभी किसी के सामने रोई नहीं, रोना भी आया तो रात को रो लेती थी, लेकिन और मेरा कोई त्योहार ऐसा नहीं जाता था जिसमें मैं रोऊं ना
जी जी,
जिन परिस्थितियों में मैंने वो समय बिताया। लेकिन बच्चों पे ये मेरा, आज मैं आपसे कह सकती हूँ कि मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैंने बच्चों को पर कभी अपनी चीज नहीं उतारी, बच्चों को मैंने उतने ही प्यार से पाला।
बच्चे आपके साथ ही हैं मैम इस समय?
10वीं क्लास तक तो बच्चे मेरे पास रहे ना, 8 महीने
जी, जी जी,
उतने साल तो लगातार रहे ना।
नहीं, अब इस समय वो लोग अपने अपने जगह पर सेटल
ना, अब अपनी अपनी जगह है, मिलते जुलते हैं
जी,
वो अपने फादर की भी सेवा करते हैं। मैंने एक बात ये भी थी, फिर भी क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार करता था, मेरे से उसको कोई मतलब नहीं था, मेरे से दुनिया थी, बच्चों को प्यार करता था
जी,
तो बच्चे कभी उसका कहना नहीं मानते थे। तो मैं बच्चों को कहती थी कि भाई मेरा और तुम्हारे पिताजी का संबंध बिल्कुल अलग है, लेकिन तुम्हें क्योंकि तुम्हारे पापा प्यार करते हैं तो तुम उनका अनादर नहीं करोगे
जी।
तो मैंने बच्चों को कभी ऐसा कुछ भड़काया नहीं,
जी जी
सही बात ही सिखाई। तो आज मेरे बच्चे उस हिसाब से उनका व्यवहार वगैरह सब बहुत अच्छा।
मैम जैसा आपने बताया कि आपका विवाह ही हुआ तो उसी समय से मतलब आपके योग्य वो नहीं थे या जो भी, तो इस तरह के हमारे समाज में एक तो विवाह को बहुत ज्यादा महत्व अभी भी दिया जाता है और इस तरह के बेमेल विवाह होते हैं तो इनका आप क्या औचित्य समझते हैं? आप तो आपने इतना जीवन देखा, अपना भी आपका अनुभव है, आप क्या कहना चाहेंगी?
भाई देखिए, मेरे ख्याल से तो लड़कियों को साहसी होना ही पड़ेगा। ये हमारी कमी यही है कि औरतें डरती हैं।
जी जी,
उनको छोटी चीजों को लेके कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, या भाई कुछ लोग अपने सुख सुविधाओं के लिए डरते रहते हैं। अब मुझे तो अच्छा खासा खाना मिल रहा था, बहुत बड़ा मकान था, हवादार सब कुछ था।
जी जी,
तो मेरे पास कोई वैसे कमी नहीं थी, साधारण जीवन, सामान्य जीवन।
जी जी,
लेकिन बस मुझे अपमान किसी भी तरह से सहन नहीं था। और एक बात और हुई मेरे साथ, तो और एक बात थी कि मेरे देवरों को पता चल गया था कि मेरे पति का स्वभाव क्या है। दो देवर थे तो वो मेरे पीछे पड़ने लगे, वो चाहते थे कि वो मेरे से संपर्क स्थापित करें।
जी जी,
संबंध स्थापित करें। मैं मानी नहीं, मैंने उनको कभी पास नहीं फटकने दिया, तो वो मुझे बात बात पे वो भी अपमानित करते रहते थे।
बताइए मैम, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं कार्यक्रम में हमारे पटल पर, आप कह रहे हैं ये बहुत लोगों के लिए शायद शिक्षाप्रद बात होगी, लेकिन शायद बहुत सारी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ ये सब होता है उनके जीवन में।
होता है
जी।
और मेरी, इवन मेरी सास को पता भी चल गया था, उसके बाद भी उन्होंने कभी मेरा पक्ष नहीं लिया।
जी,
वो अपने बेटे का।
जी जी,
तो ये सारी परिस्थितियां थी। वो बहुत ज्यादा जब मैं तंग हो गई, वो पैसे भी नहीं देता था मुझे, मेरे हाथ में बस। तो जब पैसे नहीं दोगे तो आप क्या करें? वो मेरा, क्योंकि पिता का परिवार संपन्न था, मैं जब भी जाती थी तो मैं वहां उनसे कभी ये नहीं कहती थी कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं। बस मैं ये कह देती थी अपनी माँ से कि मेरे पास कपड़े बहुत हैं, आप तो मुझे जो देना है मुझे पैसे दे दो।
जी जी,
मैं अपने आप ले लूंगी जो कुछ लेना होगा।
जी,
मतलब जितना आपको देना है, मैंने मांगा नहीं कभी।
जी जी,
देना उन्हें होता ही था। मैं उनसे ये कह देती थी कि आप मुझे कपड़े मत दो, कपड़े बहुत है मेरे पास, आप मुझे पैसे दे दो जितने देने, क्योंकि कुछ तो वो देती ही मुझे।
बिल्कुल।
और वैसे एक चीज और बता दूं कि शादी, जब मेरा रिश्ता हुआ
जी,
मैं MA PGS कर चुकी थी, 19 साल की थी।
जी जी,
तो मैंने मना कर दिया था कि मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी।
जी,
इसके साथ मेरी, मतलब मेरा स्वभाव इससे मेल नहीं खाता।
जी जी,
मैं रोई धोई भी, पर उस बीच क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने वहां बात कर ली थी, पिताजी हाँ कर चुके थे, तो बाद में मैं भी जरा आदर्शवाद में आ गई जी, भाई MA मैंने की, वो लड़का BA पास था
जी,
उसने कहा मैं BA पास हूँ।
जी जी,
जबकि उसने झूठ बोला था, वो BA में भी फेल हुआ हुआ था
जी,
और मैं थी गोल्ड मेडलिस्ट और MA PGS कर चुकी थी
जी।
तो भी मैंने सोचा, मैंने कहा कि चलो BA की मेन पढ़ाई तो BA की होती है, उसके बाद तो स्पेशलाइजेशन ही होता है, और ऐसा क्या है कि पढ़ लिख के एक व्यक्ति से निभा ना सके हम लोग, उससे निर्वाह ना कर सके
जी,
उसके साथ एडजस्ट ना कर सके, फिर तो बड़ी गलत है ना, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा, ये इस तरह के आइडियालिज्म में।
बिल्कुल बिल्कुल,
मैंने हाँ कर दी थी, जबकि मैं उससे पहले रो धो ली थी, खूब रोई धोई थी।
जी जी,
और दूसरा फिर ये लगा कि पिताजी की इज्जत का सवाल हो गया था
जी,
उनकी बेइज्जती होती ना।
जी जी जी,
हाँ,
ज्यादातर लड़कियां इस मामले में भी पीछे हो जाती, उनको लगता है कि चलो माता पिता की इज्जत का सवाल है, लेकिन जीवन के साथ समझौता
समय में तो बहुत था ना
जी, बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है मैम इस चीज की। फिर
1963-64 की बातें हैं ये।
जी जी, अब तो परिस्थितियों में काफी अंतर आया मैम, लेकिन अभी भी काफी जगहों पर ऐसा हो रहा, और जो परिस्थितियां आपने अपने साथ बताई, अभी भी मैंने देखा है कि अंदर छुप छुपा कर ये सब होता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां नहीं कहने की हिम्मत कर पाती। तो आपके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला आप एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं, आपसे बात करके पता चल रहा है कि यही सब परिस्थितियां रही होंगी जिनके कारण आपको ये कदम उठाने पड़े।
और भी था कि हमारे यहाँ जैसे वो सिर पे पल्ला लेने की बात कही जाती थी, शादी से पहले भी लड़कियां अमरोहा के थे ना, मुस्लिम बहुल जगह थी
जी जी,
तो वहाँ पे भी, और वैसे पुराने समय में था ही कि लड़कियाँ सिर पे पल्ला, चुन्नी भी ओढ़ेंगी तो सिर पे पल्ला लेके ओढ़ेंगी ये सब
जी जी।
तो मैं पता नहीं, मैं शुरू से क्योंकि गुरुकुल में पढ़ी थी, आर्य समाजी इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ हम लोगों को काफी स्वतंत्रता से सोचने का आकाश मिलता था हम लोगों को
जी जी।
तो मैं, मेरा कहना ये था कि ये कौन सा तरीका है कि भाई अपने माँ बाप के घर में भी हम स्वतंत्रता से नहीं रह सकते, शादी होगी तब तो सिर पे पल्ला करना ही पड़ेगा। वो उस जमाने में इतना सोचना बहुत बड़ी बात थी किसी लड़की के लिए
जी जी।
तो मेरे पीछे मेरे सब पड़े, तो मैंने ये कह दिया, मेरे चाचा था हुआ जरा
जी,
मतलब पिताजी ने नहीं कहा, ज्वाइंट संयुक्त तो परिवार था तो उन्होंने कहा
जी।
तो मैंने एक दिन कह दिया सबके बीच में, मैंने कहा कि अगर सारे पुरुष अपने सिर पे टोपियां ओढ़ लें
जी,
तो मैं भी सिर पे पल्ला ले लूंगी
जी।
और जब वो, फिर मैंने नहीं लिया तो मेरी छोटी बहने, क्योंकि हम लोग 14 बहने थे चाचा ताऊ परिवार में, संयुक्त परिवार में
जी।
तो मैं चौथे नंबर पर थी, 3 बहने मेरे से बड़ी थी, बाकी छोटी थी। तो वो छोटी बहने बड़ी खुश हो गई, बोली दीदी आपने हमारी बहुत
मदद की जी,
हल कर दी
तो तो मैम, जब ये शादी की बात चल रही है तो आजकल एक, हालांकि मैं इस विषय पर एक अलग से ही आपसे चर्चा कभी करना चाहती थी, लेकिन जब चली रही है तो थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि कन्यादान का आजकल बड़ा वो हो रहा है कि लड़कियां हैं तो कोई वस्तु तो नहीं कि उनका दान किया जाए शादी में। इस विषय पर भी शायद आपने कुछ लिखा था और आपका पेपर बड़ा चर्चित रिसर्च पेपर था आपका, और कुछ चर्चित रहा था, अगर कुछ संक्षेप में आप कहना चाहें इस बारे में।
हाँ, मैं असल में, मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी
जी,
तो उस समय मैं पीएचडी कर रही थी शायद
जी जी,
और इसका मतलब हुआ कि या तो पीएचडी कर रही थी या कर चुकी थी
जी।
तो 90s के 80s 80 का दशक का उत्तरार्ध या 90 का दशक का पूर्वार्ध
जी जी,
वो समय था, कोई सेमिनार था, उसमें प्राचीन भारतीय साहित्य और नारी इस विषय पर एक सेमिनार था
जी जी।
तो उसमें मुझे कहा गया कि भाई, कहते ही थे हम सब जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स होते थे या फिर टीचर्स भी, सब तो सबको ही कहा जाता था कि आप पेपर प्रेजेंट कीजिए। तो मैंने पेपर प्रेजेंट किया था, तो मुझे विषय, मैं, मुझे लगता था कि ये घिसा पिटे चीजें लेने से कोई फायदा नहीं है, कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। तो मैंने उस कन्यादान की बात की
जी,
और कन्यादान विषय पे मैंने शुरू से जितना हमारे प्राचीन साहित्य में जो कुछ मिलता है
जी,
कन्यादान शब्द पे, वो सारा लेकर के पहले वो सारे उसको दिखाया। उसके बाद मैंने ये भी दिखाया कि कानून के दृष्टि से भी
जी,
कन्यादान का किसका कोई महत्व नहीं है
जी जी।
अगर अग्नि के फेरे ये सिद्ध हो जाए कि अग्नि के फेरे लिए हुए हैं, फिर कन्यादान हो ना हो शादी वैध होती है
जी।
और अगर केवल कन्यादान किया हुआ हो और अग्नि के फेरे ना हो तो वो शादी कानून मेरे ख्याल से वैध नहीं होती वो। तो मैंने वो सारा भी उस पेपर में लिखा था
जी।
और फिर उसके बाद मैंने जो निष्कर्ष निकाले थे वो मेरा कहना ये था, इसी बीच एक मैं भूल गई, वराह मिहिर ने भी किसी जमाने में, किसी अपने समय में बहुत बड़े ज्योतिषी थे
जी,
वराह मिहिर हुए थे किसी, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि एक अच्छी खासी लड़की जो अपना हित अहित समझने लगती है, वो लड़की कैसे, उसको दान करने का किसी को कैसे अधिकार है। दूसरा, ये जो दान होता है कन्यादान, वो बिल्कुल उसकी जो रस्म होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे गऊ दान करने दिया जाता है, उसी तरह का संकल्प दिया जाता है। तो मुझे ये देख करके मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैंने कहा कोई हम लड़की वस्तु है क्या
जी जी।
तो आप बिल्कुल जैसे घर का सामान और किसी को दे सकते हैं ऐसे ही आप देंगे। दूसरा, कन्यादान अगर आपने किसी को दान दे दिया, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु किसी को दान दे दी
जी जी,
तो दान में जब मैंने दे दी कोई वस्तु किसी को, तो वो व्यक्ति उसका मालिक हो गया, मेरे से उसका कोई संबंध नहीं रहा
जी,
स्वामी तो वही हो गया ना उसका
जी जी,
फिर वो जैसे भी रखे। तो मैंने कुछ पुरुषों को ये कहते सुना बाद में अभी भी
जी,
जैसे कि भाई वो उसको अपनी पत्नी को मार पीट रहे हैं, कहने तुम्हारे पिता ने मुझे दान में दे रखा
है, जी बिल्कुल
इच्छा है मैं जो भी करूं
जी।
तो मैंने ये इस तरह का, मैंने उस समय ये पेपर पढ़ा था, और जब मैंने वो पेपर पढ़ा तो जितने भी वहां सेमिनार में बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो बहुत ही क्रांतिकारी पेपर रहा, हालांकि पूरी तरह हम सुन नहीं पाए क्योंकि समय बहुत कम दिया गया था, पर लोगों को बहुत अच्छा लगा था।
मैम एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि अगर दान शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि माता पिता लड़की की शादी करते हैं तो एक परिवार से दूसरे परिवार में वो जाती है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई लड़की को हम उस परिवार में बेच रहे हैं या दे रहे हैं या सौंप रहे हैं, तो फिर दान शब्द तो एक अच्छा शब्द माना जाएगा, ये भी बात कई लोग कहते हैं।
विवाह के जितने शब्द है ना
जी,
विवाह के पर्यायवाची
जी जी,
प्रणय है, प्रणय बंधन है, विवाह है, उद्वाह है, अभी इस समय उतने शब्द सारे मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे ले जाने के ही अर्थ में है केवल
जी।
वह धातु जो है वह का अर्थ होता है ले जाना
जी जी,
तो वो कोई बात नहीं है, और नए धातु नए भी ले जाने के अर्थ में है तो वो कोई बात नहीं है भाई, जाना तो कहीं भी किसी को एक को इधर उधर कहीं ना कहीं रहना ही है, जहाँ मातृसत्तात्मक समाज थे जैसे केरल वगैरह में
जी,
वहाँ पत्नी के साथ पति रहता था
जी जी,
हमारे समाज में पति के साथ पत्नी क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है इसलिए। लेकिन आप एक बात सोचिए ना कि एक वो लड़की जो अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती है, जिसको अपने सुख दुख का अच्छी तरह पता है, वो उसके पास भी दिल हृदय भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, मन भी है, तो उसको आप दान कैसे कर सकते हैं? किसी को दान देने का मतलब तो ये हुआ कि आपने एक चीज उठा के दूसरे को दे दी।
तो मैंने बहुत से पुरुषों को जो कि काफी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, उनको भी ये कहते सुना है कि जैसे रक्त दान होता है, जैसे जीवन दान होता है, तो इसी तरह अगर कन्या दान है तो रक्त दान हम करते हैं या जीवन दान कहा जाता है, तो क्या वो गलत शब्द है? इसी तरह से अगर कोई माता पिता अपनी पुत्री को किसी और को सौंप रहे हैं तो ये तो नहीं कह देंगे ना कि हम अपनी बेटी को उसको बेच रहे हैं या हम अपनी बेटी को वहां पर ऐसे अब छोड़ दे रहे हैं, बस अब हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं रहा।
दान शब्द
जी
यही होता था
जी जी बिल्कुल,
माँ बाप लड़की को कहते थे कि हमने तुम इस घर से जा रही हो, हमने कन्यादान कर दिया तुम्हारा, अब तुम्हारी वहां से तुम्हारी लाश ही निकलेगी
जी जी, अर्थी उठेगी वहां से जी,
तुम अब यहाँ वापस लौट के आने की मत सोचना
जी बिल्कुल,
यही कहा जाता
बिल्कुल बिल्कुल, आज भी कहते हैं मैम यहाँ से जा रही हो डोली उठ रही है, आओगी तो अर्थी उठे बस बिल्कुल,
कि तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए वहां से
जी जी,
वो उस समय यही कहा जाता था। और लड़की का जिस दिन लड़की की शादी हुई विवाह हो गया उस दिन से माँ बाप के घर में उसका कोई अधिकार नहीं रहता था
जी,
लेकिन जब से ये तलाक, ये मैंने असल में जब मैंने ये पेपर लिखा था
जी जी,
तो हमारे समाज में तलाक कानून वैध हो गया था।
अच्छा
ये मुझे क्योंकि सन याद नहीं है
जी जी,
बता रही हूँ आपको, तो मैंने ये भी लिखा था कि जिस दिन से तलाक को कानूनी वो मिल गया है, ये वैध हो गया है तलाक, तो अब उसकी प्रासंगिकता वैसे भी नहीं गई
जी,
अब तो ये नाम की दाते हैं, और आपको क्योंकि आप एक परंपरा चल रही है, आप लीक पीते जा रहे हैं लकी के थकीट
जी जी,
पर गलत है वो, आज भी गलत है, क्योंकि उसका जो भी काम हम करते हैं उसके संस्कार हमारे ऊपर हमारे अंदर रह जाते हैं
जी,
तो लड़की को लड़की कोई वस्तु नहीं है, आप जो रक्तदान की बात कर रही है ना
जी जी,
तो रक्त में रक्त को आप जब मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जाता है, रक्त तो एक चीज है, जड़ वस्तु हो गई ना फिर तो
बिल्कुल,
जड़ ना भी कहें आप उसको साइंटिफिकली हो सकता है
जी,
क्योंकि उसका काम बहुत कुछ होता है
हाँ, लेकिन आपके शरीर से तो निकल गया वो जी,
उनके दिल दिमाग तो नहीं है ना वो, तो कोई मनुष्य तो नहीं है वो
बिल्कुल,
कोई जीव तो नहीं है ना वो
बिल्कुल,
तो मैं जीव की बात कर रही हूँ, और वो भी ऐसा भाई आपके जो पशु पक्षी हैं वो तो बोल नहीं सकते, वो अलग चीजें हैं बिल्कुल, लेकिन मनुष्य मनुष्य के बहुत सारी क्षमताएं हैं,
मैम आपकी एक पुस्तक किन्नर गाथा वो भी बहुत चर्चित और प्रसिद्ध रही है और किन्नरों के ऊपर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो इस पुस्तक पर हम अलग से चर्चा करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप सुभन पर आए और हमको इस पुस्तक के विषय में कुछ बताएं।
बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार रहूँ जब भी आप कहेंगी उसके बाद,
क्योंकि ये एक ऐसा विषय है मैम किन्नरों के ऊपर वास्तव में बहुत ज्यादा कुछ काम भी नहीं किसी ने किया, नाम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं इस बारे में, लेकिन आप जैसे लोग जब इतना इस विषय में रखते हैं जानकारी तो हमें जानना चाहिए। और मैम कुछ बताना चाहे, पुराणों के ऊपर भी आपका काफी आपने शोध किया है और
संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारा साहित्य मैं पढ़ती रही हूँ।
जी जी।
और जब भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस वगैरह होती थी, राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ ये सब, जिनमें मैं पेपर पढ़ती ही थी कोई मुख्य, तो एक पुराणों पे भी एक पेपर हुआ था।
जी जी।
एक पुराण और राष्ट्रीय एकता।
जी।
तो उसमें क्योंकि मेरा पीएचडी का विषय जो है वो सामाजिक संबंधवादी शब्दों के संदर्भ में ही था।
जी।
ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्रयुक्त शब्दों का।
जी जी।
तो मुझे यही एक टॉपिक मुझे सूझा कि भाई पुराणों में परिवार की स्थिति क्या है।
जी।
तो मैंने उसमें भी यही सब ये सब देखा, तो उसमें देखा कि पुराणों में कहा हुआ है कि चौथे या आठवें वर्ष में ही लड़की की शादी कर देनी चाहिए।
जी जी।
और एक पुराण तो कहता है कि पति चाहे लंपट हो, नपुंसक हो, शराबी हो, कैसा भी हो, पति स्त्री का देवता है।
पति स्त्री का देवता है।
हाँ
जी।
तो एक तो ये बात, और दूसरा जब आप चौथे आठवें साल में शादी की बात कर देंगे विवाह की, इसका मतलब है कि बाल विवाह की बात हो गई।
बिल्कुल।
तो लड़की पढ़ेगी नहीं। महिलाएं, चूंकि महिलाओं की शिक्षा ही को ही खत्म कर दिया गया और वो घर की चार दीवारी में बंद हो गई महिलाएं, तो उनका दिमाग खुलता कहाँ से, तो वो बंद दिमाग की हो गई। और अभी तो बहुत बड़ा प्रतिशत महिलाओं का, उनके सबके दिमाग आज भी बंद है, क्योंकि उनको आज भी बचपन उनका जो बीता होगा वो इसी तरह बीता होगा। लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं देनी, लड़कियों को जोर से हंसना नहीं चाहिए, लड़कियों को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए, इस तरह से वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं।
जी। तो मैम एक बात मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब से मुगलों का आक्रमण हुआ हमारे देश पर, उनका शासन हुआ, तब अपनी बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह की प्रथा आई कि उनकी बुरी नजर ना पड़े तो माँ बाप जल्दी अपने बच्चों की शादियां लड़कियों की कर देते थे। और हमारे ग्रंथों में, वेद पुराणों में, या जैसे रामचंद्र जी थे तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम ही 25 वर्ष की अवस्था में खत्म हुआ उनका, तो जब उनका विवाह हुआ होगा तो जरूर वो 25 साल के रहे होंगे, तो सीता जी भी जो है वो लगभग उसी उम्र की रही होंगी। तो कहीं पे भी कहते हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं है कि बाल विवाह की प्रथा रही हो, ये मुगलों के समय से आई है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन पुराणों में है कि 4 से 8 साल में विवाह होना चाहिए लड़कियों का।
हाँ, पुराण की ही बात बता रही हूँ।
जी जी।
तो किताब असल में, पुस्तक मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाई देती।
जी।
याद नहीं था, मैं साथ में रखती तो मैं आपको वैसे पढ़ के भी सुना देती।
जी जी।
तो वो क्या है कि उस तरह से वो मैंने लिखा ही है उसमें अपने पेपर में, वो छपा हुआ है कहीं।
जी जी।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षा, जब शिक्षित ही रहेगी लड़की तो उसको, और घर की चार दीवारें बंद हो जाएगी तो उसका दिमाग, महिला का दिमाग खुलेगा कहाँ।
जी।
और हुआ ये कि जब महिलाओं को शिक्षा, वो शिक्षित नहीं हुई रही,
जी,
शिक्षा उनकी बंद कर दी गई और उसके बाद उनको घर की चार दीवारी में बिल्कुल बंद कर दिया गया।
जी जी।
तो घर के सारे लोग जो पुरुष थे, पुरुषों का अनादर, पुरुषों ने उनका, महिलाओं का ज्यादा अनादर करना शुरू कर दिया और ज्यादा। और यदि पति आदर नहीं करेगा बच्चों का, अपनी पत्नी का, उसको सम्मान नहीं देगा तो बच्चे भी नहीं देते।
नहीं देंगे। जी बिल्कुल।
स्पेशली मुख्य रूप से, विशेष रूप से लड़के तो बिल्कुल नहीं देते।
जी जी।
अगर पति ना दे तो।
जी।
तो ये इस तरह से देखा जाए तो आपने अपनी माँ के प्रति बच्चों के मन में असम्मान की भावना पैदा कर दी ना।
बिल्कुल।
ज्यादातर तो मेरा कहना ये था कि जो बच्चे अपनी माँ की का सम्मान नहीं कर सकते, माँ को, उनकी माँ को पूज्य नहीं मान सकते, वो अपनी मातृभूमि को कहाँ मानेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल,
वो मातृभूमि के प्रति का वो भाव नहीं रह सकता
जी।
तो मुझे तो लगता है कि ये पुराणों ने जिन्होंने ये लिखा उन्होंने ये बहुत ही बड़ा इस देश के लिए बहुत बड़ा कहना चाहिए अपराध किया
जी। बिल्कुल,
वैसे पुराणों में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे पुराणों में तीर्थ यात्राओं को कहा गया, गंगा स्नान को कहा गया, तो वो उस समय यातायात के साधन नहीं थे, लोग फिर भी दूर दूर से आ करके एक साथ मिलते थे, पूरे भारत के लोग आज भी मिलते हैं, तो उस समय के लिए ये बहुत प्रासंगिक थी ये चीजें
जी जी।
तो राष्ट्रीय एकता में ऐसा नहीं कि मैं कहती कि राष्ट्रीय एकता में उनका योगदान पुराणों का है, अच्छा योगदान है
जी।
क्योंकि उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यही लोग नहाएंगे, कोई भी आके नहा सकता था
जी,
कर सकता था
जी,
ना?
जी।
लेकिन जो पारिवारिक संबंध है उनमें फर्क पड़ा
जी,
उनमें बहुत अंतर आया, उसके उसके जो परिणाम हुए वो बहुत इस तरह से हानिकारक
जी जी,
और वो आज तक भी ऐसी स्थितियां चल रही है
जी।
ज्यादातर
लोगों को एक प्रेरणा मिलती है अच्छी चीजों को सुनकर, और जब हमारे ग्रंथों में भी अगर इस तरह की चीजें थी कि बाल विवाह को ही प्रोत्साहन दे रहे थे तो फिर उसका तो असर आएगा ही समाज में।
अच्छा, फिर एक बात है कि आप एक बात देखिए ना, जिनको आप धर्म ग्रंथ मान रहे हैं
जी,
उनमें ये बातें हैं
जी जी,
और आम जनता ये नहीं विश्लेषण कर पाती कि ये क्यों लिखा गया। उसने तो जो वहाँ लिखा है बस उन्होंने तो वो तो उसको पढ़ लेते हैं, और जो हमारे उपदेशक है उनमें भी बहुत सारे ऐसे ही हैं
जी जी,
वो अपना लकीर की लकीर के फकीर है, वो भी वो लकीर पीट रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल,
तो स्वाभाविक है कि लोगों जो आम सामान्य जन के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता।
नहीं बिल्कुल
है ना, तो आपकी फिर वो विचारधारा उसी तरह की बनती चली आपकी।
बिल्कुल, और जैसा कि आपने मैम उस समय एक ये कदम उठा लिया, उस समय आज के समय में भी मुश्किल है लेकिन उस जमाने में तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा, और बहुत कम लोग इस तरह से सोच पाते होंगे। जैसा आपने बताया तलाक भी नहीं हो पाता था शायद उस समय 60s में जब आप बता रहे हैं।
पता नहीं तलाक था कि नहीं, मुझे ये भी याद नहीं है
जी।
मैंने तो असल में ये सोचा था कि मैं अपने पति को ये कह के आई थी, मैं तो जरा बहुत बोल्ड थी और पढ़ी लिखी थी, उससे ज्यादा ही पढ़ी लिखी थी
जी,
और किताबें पढ़ती रहती थी, किताबें पढ़ना मेरा शौक रहा है, स्वाध्याय मेरा शौक रहा है
जी,
तो मैं उसमें मेरी रुचि हमेशा से रही है और सब तरह की किताबें पढ़ती थी पुस्तकें, तो उसमें मैं उसको ये कह के आई थी कि मैं पति को भगवान नहीं मानती हूँ
जी,
और मुझे अगर कोई सही व्यक्ति मिला तो मैं उससे शादी कर लूंगी दोबारा
जी।
पर भाई सुनिए, मैं बहुत घूमी हूँ इधर उधर, पर मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं लगा, मतलब जिससे मैं ये सोचती कि उसके साथ में शादी कर सकती हूँ, क्योंकि आम तौर पे हमारे यहाँ जो पुरुष है का जो उसका उसकी वैचारिकता है
जी,
वो स्त्री को सम्मान बहुत मुश्किल से ही देती है
जी,
और ना उसे वो स्वतंत्रता देती है कि पत्नी जो है वो उसकी पत्नी अपने तरह से अपना जीवन बिता सके
जी,
है ना। छोटी छोटी बातों पे आप एक बात देखिए, मैं घरों में देखती हूँ कि अभी पहले तो होता ही था
जी,
अभी भी मैं देख रही हूँ दोनों नौकरी कर रहे हैं पति पत्नी
जी जी,
फिर भी घर का जितना काम ज्यादा से ज्यादा काम पत्नी कर रही है
जी,
और यहाँ तक कि खाना खा रहा है पति, उसकी थाली भी पत्नी ला रही है, और खाना खा के वो ऐसी उठ गया और पत्नी उठा के ले जा रही है
जी।
ये क्या तरीके हैं भाई, आप भी नौकरी कर रहे हैं, आप अगर आजीविका आप घर में आजीविका अच्छी कमा रहे हैं, अर्जन आपका अच्छा है तो पत्नी का भी तो है
जी।
ये क्या मतलब है कि पत्नी ही सेवा करे आप कुछ नहीं करे, पर जो हमारी ये तीसरी पीढ़ी है मेरे से
जी जी,
उसमें लड़के इन बातों को समझ रहे हैं और बराबर,
लेकिन कहने की बातें तो मैम ये होती है ना कि शिव जो है वो शक्ति के बिना कुछ नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा बस सिर्फ कहने कहने की बातें हैं, शक्ति को शक्ति नहीं समझा जाता, और जैसा आपने कहा कि वो खाने के बर्तन भी उठाए और ये सब काम, तो उसको ही बड़ा जो जो महिला ऐसे करेंगी उनको बड़ी उच्च दृष्टि से देखा जाएगा कि ये बहुत अच्छी औरत है, देखो कैसे सारा करती है।
जी तो मेरे जैसी महिलाओं को परिवार वाले उतना आदर नहीं देते।
जी 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 बिल्कुल,
क्योंकि सबको अभी जो ज्यादातर जिनका विचार जो पुरानी परंपरा से चले आ रहे हैं उनको तो ये अजीब लगता है ना कि कोई महिला ऐसे कैसे बातें कर सकती है और ऐसा कदम क्यों उठाए। जब ये संक्रांति काल एक तरह से चल रहा है समाज में,
जी जी,
और जो संक्रांति काल होता है उसमें सब तरह की घटनाएं होती हैं।
जी जी,
क्योंकि महिलाएं भी कई ऐसी हैं जो अपनी स्थिति का लाभ उठा रही हैं।
बिल्कुल,
बहुत ही शादियां इसलिए भी ऐसे टूट जा रही हैं कि शादी कर ली और उसके बाद आपने कुछ बहाने बना बना के माँ बाप भी सिखा देते हैं, और कई बार लड़कियां अपने आप ही उस तरह के कदम ले ले चरण ले।
बिल्कुल मैम, ये चीज बहुत हो रही है, बहुत हो रही है बिल्कुल।
वो क्या करती है कि मतलब खूब बड़ी सी लाखों रुपए आया जितना भी हुआ उस तरह की एक राशि उन्होंने रख दी कि इतने रुपए दे दो तो तलाक हो जाएगा, मतलब और मैं साथ नहीं दूंगी।
बिल्कुल,
और जिस तरह का कानून है, असल में ये बहुत लंबी चर्चा के विषय है।
बिल्कुल मैम, ये हर मुद्दा एक अलग समय मांगता है चर्चा का।
हाँ, विषय एक पक्ष जो है ना वो बिल्कुल अलग पक्ष।
जी बिल्कुल,
तो तरह जब तक इनको इन पे चर्चा न की जाए तब तक उसके ज्यादा मायने नहीं रखते रहते।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जैसा आपने कहा कानून भी ऐसे हो गए हैं कि वो बस महिलाओं को बहुत ज्यादा छूट दे दी तो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जो वाकई में जो पीड़ित है उसके। जी
हाँ, पुरुषों के पक्ष में भी आया है अब कानून।
जी आया है। जी बिल्कुल, और आपने जी बिल्कुल चलेगा मैम, और बहुत सारे सुधार भी हुए हैं। मैं अपने साथ ही अगर देखूं तो हमें घर से पिता का पूरा सहयोग मिला, और जैसे हम काम करते हैं तो बहुत सारे पुरुष हैं जो साथ में एकदम सम्मान देते हैं और अच्छे से काम करते हैं हमारे साथ। तो ऐसा भी नहीं है। जी जी, बहुत संकुचित दृष्टिकोण हम नहीं रख सकते हैं, बहुत ज्यादा सुधार भी हुआ, महिलाओं को पूरा सम्मान भी दिया जाता है हर जगह, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कमतर करके आंका जाए, तो ये भी परिस्थितियां बनी है। लेकिन हाँ, उस तरह की भी हैं, अभी भी वो सोच भी हावी है हमारे ऊपर समाज में, लेकिन इन परिस्थितियों का भी अब ऐसे भी घटनाओं की शुरुआत अब हो रही है कि महिलाओं को पूरा सम्मान मिले।
ऐसा है भावना जी, पहले भी थे परिवार ऐसे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे।
जी मैम,
बहुत से कुछ परिवारों में पहले भी आदर दिया गया।
जी बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, लेकिन मतलब मैंने तो जो परिवार मैं जिस उसमें रही और जितने ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि यही स्थितियां थी कि दोनों काम कर रहे हैं। जब मैंने मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई हूँ
जी,
तो मैं असल में उस समय 1990 से और 94 तक, जनवरी 1990 से
जी,
मैंने अपनी ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक प्रोजेक्ट पे काम किया था
जी।
तो मैं वहाँ बैठती थी तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जो औरतें काम करती थी, वहाँ एक सेंट्रल सेक्रेटरिएट लाइब्रेरी है मिनिस्ट्री की, उसमें बैठती थी, वहाँ कई बहुत सारी महिलाएं काम करती थी, तो सबसे वो काम करती थी तो उनसे सबसे पता चलता था कि वो सुबह 3 बजे उठ करके पूरे घर का खाना वाना बना के सब काम करके वो आती हैं और जाके फिर काम करती है।
जी जी,
पति फिर भी उनके काम नहीं करते।
जी,
लेकिन अब इतने सालों में ये तब की बात हो गई, तब से अब तक काफी कुछ परिवर्तन तो आ ही रहे।
जी आई है,
मैं तो बहुत आशावादी हूँ कि समय के साथ साथ परिवर्तन आएंगे।
जैसा आपने कहा, जी जी, जैसा आपने कहा संक्रांति काल है तो उसमें दोनों पक्ष ही उभरेंगे, लेकिन ठीक आप कह रहे हैं कि अब फर्क आया इन चीजों का।
और मैंने आप एक बार देखिए ना कि
जी जी,
ये जो संक्रांति काल दोनों तरह से है, समाज में जो हमारा जो अनजेड वर्ग था
जी,
जिन्हें आप दलित वर्ग कहते हैं,
जी जी,
तो समाज में कानून से उनको भी सुरक्षा मिली है।
बिल्कुल,
तो उनके लिए भी यही कहा जाता है कि देखो ये कैसे व्यवहार कर रहे हैं, मतलब इनको ये तमीज नहीं, कैसे हर बात के लिए उनके जरा सी उनसे गलती हो जाए तो मैंने देखा लोग कहेंगे अरे हैं तो वही ना,
जी जी
जैसे किसी ने कह दिया हायत है तो चमारी
जी,
तो
जी.
मैं उन लोगों से इस बात के लिए बहुत मेरे आप वो विवाद हो जाता है कि भाई आप ये बात क्यों कहते हैं
जी,
क्यों आप लोगों में नहीं है क्या ऐसे जो नहीं. पहले काम करते रहे उन्होंने कौन सा कोई बहुत अच्छा कर दिया सब कुछ
कुंठित मानसिकता जी कुंठित तो, मानसिकता रहती है हमारी एक कुंठा बन जाती कि नहीं बस ये है तो ये ऐसे ही है.
अच्छा एक बात है ना कि भाई उनके मन में भी तो विद्रोह जागता है.
बिल्कुल बिल्कुल.
जैसे औरतों के मन में विद्रोह जागता है, महिला के मन में विद्रोह जागता है, लड़कियां विद्रोह के कारण भी तो करती हैं ना ये सब.
जी बिल्कुल.
हम भी पुरुषों को मजाक दिखाएं
जी,
बहुत सी लड़कियां इसलिए भी करती हैं.
बिल्कुल.
और यही बात उन लोगों के साथ है, समाज में उस वर्ग के साथ है और परिवार में महिला के साथ.
जी जी
दोनों की बात एक ही है.
बहुत अत्याचार हुए हैं जी. और मैम आपके बारे में एक बात और मैंने सुनी है कि किसी ने आपको बोला था कि कोई महिला थी वो आत्महत्या करने जा रही थी और आपका जब उन्होंने पढ़ा आपके बारे में जाना तो वो ये कदम उठाने से वो रुक गई. इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप?
वो लेख तो मैं आज तक नहीं पढ़ पाई
जी,
लेकिन ये मुझे पता है कि जिन लेखिका ने मेरे बारे में लिखा था
जी जी
बंगाली में लिखा था
जी,
एक मित्र है
जी.
उन्होंने लेकिन उनके पास ये पत्र आया था.
अच्छा.
मैंने आपने गुरुकुल की वो दिल्ली की अध्यापिका के बारे में लिखा, मैं आत्महत्या करने जा रही थी लेकिन मुझे लगा कि अगर वो इस तरह जीवन जी सकती है तो मैं क्यों नहीं जी सकती. तो उसने कि मैंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया. और वैसे भी मैंने कुछ लोगों के साथ काउंसिलिंग भी की है, कुछ महिलाओं के साथ वो आत्महत्या के लिए जा रही थी तो मैंने मुझे पता चला तो मैंने बात की. और वैसे मैं किसी से ज्यादा अपने जीवन की चर्चा नहीं करती
जी जी.
आपको तो मैंने कह दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग औरतें साहस करें.
बिल्कुल.
मुझे कोई शिकायत नहीं है, जीवन जैसा है वैसा ठीक है.
बिल्कुल.
अपना अपना प्रारब्ध मैं मानती हूँ कि अपना अपना प्रारब्ध लेकर के हर व्यक्ति आता है.
लेकिन आपसे जितनी भी बात मैंने की मैम ये समझा कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी कैसे आपने अपने लिए सब कुछ अच्छा सोचा किया और आज मतलब इतना हमें इतनी बातें आपसे सीखने को मिली उस मुकाम पर.
मैं तो ये भी मानती हूँ, देखिए आप सोचिए कुछ अजीब लगे शायद आपको कि मुझे लगता है कि मैं जब पढ़ती थी तो मैं ये सोचती थी कि ये इतना गलत वेदों पे मैं वेद हमें पढ़ाए जाते थे गुरुकुल में
जी जी.
तो मुझे वो मंत्रों के जो अर्थ बताए जाते थे वो समझ में नहीं आते थे बिल्कुल
जी.
मैं ये सोचती थी कि जब मैं पढ़ लूंगी ना यहाँ से बीए कर लूंगी तो मैं इस पे काम करूंगी
जी.
तो शायद विधाता को यही मंजूर था, उसने मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से करवा दी कि मुझे वहां से निकल के आना पड़ा और फिर मैंने वो काम कर भी दिए
जी जी.
वेदों पे मेरी पुस्तकें दो पुस्तकें छपी हुई हैं, दो तीन, ज्यादा लेखन मैंने नहीं किया है
जी.
एक कुछ वेदों पे है दो तीन, कुछ वो है शोध पत्र तो मैंने कई लिखे
जी.
लेकिन फिर एक बार मैंने 2005 में उस पे नदी जोड़ पे के विरोध में एक पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तिका.
अच्छा.
और अब ये किन्नर गाथा लिखी है
जी जी.
बाकी एक पत्रिका की है, यहाँ एक आश्रम में रहती हूँ, उनकी आश्रम की पत्रिका है, उसकी एडिटर हूँ, संपादक
जी जी.
तो संपादित करती हूँ उसे, तो उसमें वो संपादकीय लिखती रहती हूँ, तो जो मेरे विचार हैं और जो मेरी सीमाएं हैं उस हिसाब से मैं उनमें लिख रही थी
जी मैम.
इसी इतना ही लिखती हूँ, इससे ज्यादा नहीं है कि इतना कुछ भी लिखूंगी
जी. मैम आप जैसे लोग ना जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं मैम. और मेरा सौभाग्य कि मुझे आपसे बात करने का सुअवसर मिला आज. और हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से आपकी जीवन यात्रा से कुछ न कुछ सीखेंगे और एक आत्मबल एक विश्वास तो हर व्यक्ति अनुभव करेगा आपके जीवन को देखकर सुनकर.
एक बड़ी विशिष्ट बात छोड़ दी मैंने
जी,
मैं आपको बता दूं
जी.
आप चाहे इसमें समाहित करें या न करें.
नहीं नहीं मैम बताएं.
मेरा जब विवाह हुआ
जी
तो मैंने अपने पिता को से कहा कि आप ये लिख दीजिए वहाँ पर मेरी ससुराल में कि लड़की गहने नहीं पहनेगी
जी,
गहने ना पहनाए.
अच्छा.
क्योंकि मेरा मानना था कि गहने पहनने से महिलाएं कमजोर होती हैं
जी. अच्छा नहीं, ये तो हम बिल्कुल
उनका लालच बढ़ता जाता है
जी,
और उसमें वो बहुत समय लगा देती हैं
जी।
तो आपके पास और कामों के लिए उतना टाइम नहीं रह जाता, समय नहीं रह जाता
जी।
वो मतलब उससे कुछ पक्ष ऐसे थे तो मुझे तभी से ये लगने लगा था कि ये कोई जरूरत नहीं है। और बड़ी अजीब बात है कि महिला तो महिला स्त्रीत्व जो है वही आकर्षण आकर्षक है
जी,
लेकिन ये समाज में एक अजीब चलन चला। पुराने समय में तो बहुत प्राचीन समय के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसमें स्त्री और पुरुष दोनों अलंकार
जी जी पहनते जी बिल्कुल,
और बाद में औरत को तो ये कह दिया गया कि वो स्त्री को पुरुष को आकर्षित करे, जबकि प्रकृति में भी ये देखा जाता है कि पुरुष अपनी ओर आकर्षित करता है स्त्री को
जी।
तो अब ये औरत का मानस भी बन गया कि खूब सजेंगे तभी पुरुषों को आकर्षित कर सकेंगे
जी।
वैसी कुछ चीजें थी, मतलब मैं नहीं कहती कि वो सब लोग कैसे जो भी सोचे, मेरी सोच यही थी और इसीलिए मैंने कभी गहने नहीं पहने अपने जिंदगी में, बहुत ही कम पहने। कुछ समय तक तो पहनती नहीं क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिल्कुल ही पहले ही दिन से मना कर दूं
जी जी,
जितना कह चुकी थी उतना कर दिया था। लेकिन हाँ, जब मेरी सास ने मुझे कई बार टोका कि भाई तू नहीं पहनती और हम तो वो जवान है और मतलब तुम बूढ़ी हो गई हो
जी,
नहीं पहनती थी, तो फिर मैंने उन्हें एक बार याद दिलाया। मैंने कहा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे अपने पिताजी से कहा था, तो बोली कि हाँ तेरे पिताजी की चिट्ठी तो आई थी। उन्होंने गहने बनवाए, ये नहीं कि उन्होंने बनवाए
जी जी, समय से बहुत आगे की सोचती मैम उस समय भी आपकी।
हाँ, वो सब मुझे कहते हैं और मुझे आज भी लोग कहते हैं कि जिनसे मैं बात करती हूँ तो कहते हैं कि भाई आपके जैसे कैसे सोच सकते हैं सब
जी,
और या आपके जैसा साहस सब में नहीं हो सकता।
बिल्कुल, ये तो
कह देते हैं तो ठीक है जो भी है, मुझे तो शायद वो विधाता ने ऐसा ही बना के भेजा
जी।
और मैं बचपन से ही मेरी आदत थी कि मैं जितना हो सकता था मैं दूसरों की सहायता करती रहती थी
जी,
आज भी करती रहती हूँ, हमेशा की है। जितने मेरे साधन है उतने साधनों में मैं
आपने आप काफी बच्चों को आपने पढ़ाया भी है, विद्यादान आप करते हैं।
गरीब बच्चों को पढ़ाया
जी जी,
जहाँ रहती हूँ वहाँ कोई भी गरीब बच्चा मेरे संपर्क में आए, मुझे पता चलता है कि उसको जरूरत है तो मैं उनको हिंदी इंग्लिश संस्कृत
जी
तीनों भाषाएं पढ़ा देती हूँ
जी जी।
भाषा शिक्षण में मेरे ये माना जाता है, हिंदी और संस्कृत का तो बहुत अच्छा अधिकार है मेरा
जी,
विश्वविद्यालय में भी प्रसिद्ध थी इस बारे में
जी,
इस से मेरा बहुत अच्छा अधिकार है। और हिंदी पे तो मैं वैसे ही कह रही हूँ कि हिंदी पे भी है
जी जी,
बहुत अच्छा। देखिए जीवन इसी, मुझे तो लगता है कि जीवन इसी में सार्थक है कि आपसे जितना जो कुछ हो सके आप दूसरों के लिए जहाँ हो सके आप उनके लिए सहायक बन सके
जी। और जबरदस्ती का अत्याचार भी हम क्यों सहें, ठीक है आप आपके ऊपर उस समय इस तरह से हुआ और आपने अगर उसका विरोध किया तो इसको कोई गलत कदम नहीं कहा जाएगा।
नहीं, मैं तो कभी नहीं मानती, मुझे तो लगता है कि मैं नर्क से निकल करके स्वर्ग में आई।
बिल्कुल,
तो मुझे तो लोगों ने मुझे किसी भी दृष्टि से देखा हो
जी जी,
मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की लोग क्या कहेंगे
जी,
मुझे तो ये लगता था कि मैं बिल्कुल सही चल रही हूँ, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करती, किसी मैं कभी झूठ नहीं बोलती, किसी को धोखा नहीं देती, किसी का अनादर बिना बात किसी का नहीं करती, अपने से बड़ों का मैंने सदा आदर किया है, अपने से आसपास के सब बच्चों को मैंने प्यार दिया है
जी, तो
और आज भी मेरे पास से कितने लोग जुड़े हुए
जी जी,
ये कोई नहीं। आप अगर अपनी तरह से अच्छा जीवन जी रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन, तो आपको ना तो कोई कमी रहती है, आप इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए कि कोई क्या कहेगा
जी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक,
लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सोच विचार जरूर करना पड़ेगा, चिंतन मनन कि आप कर क्या रहे हैं, उसमें किसी दूसरे की हानि ना हो।
बिल्कुल, खाली विरोध कभी विरोध ना करें, अगर वाकई में कुछ ऐसा है विरोध करने लायक तभी हम विरोध करें।
हाँ तो चर्चा करें इसके लिए, अगर मैं तो आज भी ये बात है कि अगर मुझे कोई बात ऐसी समझ में आ जाए कि ये बात गलत है
जी,
मैं अगर कोई बात मेरा अपना विचार है और अगर कोई कहे कि ये गलत है, अगर मैं उसको मुझे समझ में आ जाए कि ये वाकई मैं गलत सोच रही थी
जी,
तो मैं ठीक कर देती हूँ उसको, मैं कोई दिक्कत नहीं
जी जी,
शर्म किस बात की है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता
जी,
तो ठीक है जैसा है। बस औरतों को ये नहीं सोचना चाहिए, औरतों को क्या किसी को भी
जी,
कोई क्या कहेगा
जी जी,
आपको आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपना जीवन, एक तो अपना स्वास्थ्य ठीक रखें
जी,
और आप दूसरों के लगातार जहां तक हो सके आप ये कोशिश करें कि आप जहां कहीं आपके आसपास ऐसे लोग हों असहाय या कुछ उनकी उनके सहायक बन सके
जी। बहुत बड़ी बात आपने कही मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छा।
दो चीजें हैं
जी, बताएं।
एक मैं और चीज बता देना चाहती हूँ आपको
जी जी,
कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में एक कविता है
जी,
वरदान। वैसे उसका शीर्षक बंगाली में तो है विपदे मोरे रौखा करो।
अच्छा
करके
जी,
और उसका अनुवाद मैंने एक पढ़ा था वरदान
जी,
और उसकी पहली लाइन है कि विपत्तियों से रक्षा करो, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया, विपत्तियों से भयभीत न हो ये वरदान दे। तो मुझे लगता है कि हमारी जितनी प्रार्थना है ना कि भगवान तू हमारे कष्ट हर, ये कर वो कर, मुझे तो लगता है रविंद्रनाथ टैगोर की ये कविता हर घर में दीवारों पे टंग जानी।
वाह बहुत अच्छी बात आपने कही मैम, हम डर डर के ही सारा जीवन बिता देते हैं। बिल्कुल
हाँ, ये पूरी कविता मुझे याद है और मैंने बहुतों को इसकी फोटो स्टेट कॉपी करके दी है।
सुनाना चाहेंगी मैम ये कविता आप?
हाँ बिल्कुल
बिल्कुल सुनाए,
सुना देती हूँ। विपत्तियों से रक्षा करो, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया, विपत्तियों से भयभीत न हो ये वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं ये वरदान दे। तेरी सहायता मुझे न भी मिल सके तो भी यह वर दे कि दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हों तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण नहीं हुआ, मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ, मेरा भार हल्का कर दे यह याचना पूर्ण होने की भिक्षा नहीं मांगता, यह भार वहन करके चलता रहूं यही वरदान दे, सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, और दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करती हो तब भी मैं तेरी कृपा के लिए शंकित न हूं यही वरदान दे।
वाकई बहुत बहुत अच्छी बात मैम, अगर ये सोच हमारी हो जाए तो सारे मन के भय निकल जाए। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लग रहा मैम आपसे बात करते हुए, और कुछ कहना चाहेंगी मैम जाते जाते आप?
एक बात जो मेरे जीवन के कुछ वाक्य ऐसे ही रहे हैं ना, एक तो ये कविता
जी
और एक वाक्य और है, यदि आपको विश्वास है तो शिकायत कैसी
जी,
और यदि विश्वास नहीं है तो शिकायत कैसी।
वाह, विश्वास है तो कैसी शिकायत और विश्वास नहीं है तो कैसी शिकायत। वाह बहुत ठीक,
इसकी व्याख्या कर दूं थोड़ी
जी?
व्याख्या
जी बिल्कुल करें मैम, बिल्कुल करें।
ऐसा है देखिए, जिस व्यक्ति पे हमें विश्वास है कि ये बहुत अच्छा है, ये हमारा हित चाहता है
जी,
और ये हमारी हमेशा समय पे हमारे काम आता है, हमारी सहायता करता है, तो होता ये है ज्यादातर संबंधों में, किसी भी संबंध में
जी जी,
तो होता ये है कि आपने 10 बार तो सहायता कर दी, 10 बार तो आप बिल्कुल उसी तरह आप सहायक बन गए, सब करते रहे, और अगर एक बार आपने नहीं किया
जी,
तो मैंने देखा लोगों का स्वभाव ये है कि उस एक बार करके वो अपना किसी बहुत जरूरत, बहुत मैं सोचती हूँ विपत्ति के समय में भी ऐसा हो सकता है
जी जी,
तो जिस जो व्यक्ति लगातार आपकी सहायता करता रहा है लेकिन उस समय वो नहीं कर पाया
जी,
तो ये विश्वास की बात है कि अगर विश्वास होगा तो हम ये सोच लेंगे कि उसकी कोई
मजबूरी
होगी, तभी वो नहीं कर पाया
जी जी,
तो ये तो हो गया कि विश्वास है तो शिकायत कर
जी,
और विश्वास नहीं है तो शिकायत करती, जिसको हम हमें पता ही है कि ये व्यक्ति इसका स्वभाव ऐसा है, ये कभी भी धोखा दे सकता है कुछ भी, तो उसने कभी भी धोखा दे दिया तो क्यों शिकायत।
शिकायत जी, बिल्कुल बहुत सही बात कही मैम आपने, ऐसा होता है, हम किसी के लिए 10 बार भी कुछ कर देते हैं लेकिन एक बार ना कर पाए तो संबंध खराब हो जाते हैं कई बार, अगर विश्वास शंका है तो।
ये समझ में नहीं आता कि ये संबंध खराब करने की बात
जी, जी बिल्कुल,
आपस में वार्तालाप करो, आप संवाद करो, कभी भी कोई ऐसी स्थिति हो तो संवाद कर लेना चाहिए कि भाई ऐसा क्या स्थिति थी।
जीवन के बहुत व्यावहारिक बात आपने मैम कह दी, प्रैक्टिकल बात है ये बिल्कुल।
तो मेरे संबंध इतनी आसानी से किसी से खराब नहीं होते
जी, हमसे भी एक संबंध बन गया मैम आपका, शुभन से भी अब आपका एक संबंध है और हम आपका मार्गदर्शन हमेशा चाहेंगे, और बहुत अच्छा लग रहा मैम आपसे बात करते हुए, लेकिन अब समय का हमें ध्यान रखना होगा, तो आपने हमको अपना इतना अमूल्य समय दिया मैम, बहुत बहुत आभार, और हम फिर आपसे एक बार आपकी पुस्तक किन्नर गाथा पर चर्चा करेंगे।
ठीक है, जब आप कहेंगी उसके लिए भी मुझे जरा पुस्तक को एक बार फिर से देखना पड़ेगा।
बिल्कुल मैम, आप आराम से देखें, फिर हम कुछ दिनों में इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार मैम, प्रणाम मैम।
शुक्रिया भाई, देखिए ऐसा है
जी,
ये आपकी भी उदारता है कि आप मुझे इतना सम्मान दे रही
हैं। नहीं मैम हम लोग तो आप लोगों का, आपसे सुनेंगे ये सब चीजें जानेंगे तभी हम कुछ समझेंगे मैम, ऐसा नहीं है, आप लोगों का बहुत बड़प्पन है कि हमें इतना समय देते हो।
मैंने एक चीज आपको खैर नहीं बताई
जी,
कि मैं 2 साल पहले
जी जी
3 साल 2020 2019 के दिसंबर से
जी
2020 के जनवरी तक
जी
1 महीना मैंने अंबिकापुर छत्तीसगढ़
जी जी
मैं जेल के कैदियों को संस्कृत पढ़ा के आई थी।
अच्छा, वहीं पर रह के
है?
वहीं पर रहे आप अंबिकापुर में ही?
हाँ, अंबिकापुर में, वो जो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट थे जेल के
जी जी,
उनसे मेरी जान पहचान थी, उन्होंने एक डाली व्हाट्सएप पे लिखा उन्होंने कि कोई संस्कृत पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा
जी,
तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ
जी जी,
तो वो मुझे माँ कहते हैं, वो बोले माँ तो फिर मैं आपका टिकट कब का बुक करवा दूँ, तो बस वो संबंध तो बना ही हुआ था, मैं पहुँच गई
जी
अंबिकापुर
जी जी,
और वहाँ 1 महीना मैं जेल के कैदियों को, महिलाओं को अलग, और महिलाएं तो 7-8 थी
जी,
पुरुष ज्यादा थे, पुरुष तो बहुत सारे थे
जी,
50-60 होंगे शायद, तो 1 महीना उन लोगों को मैं संस्कृत पढ़ा के आई।
बहुत बड़ा कार्य मैम ये,
और वो लोग सब मेरे से इतने खुश हो गए थे
जी,
जब मैं आई हूँ तो महिलाएं तो वाकई रो गई थी
जी जी,
बड़ा अच्छा लगा मुझे तो, क्योंकि वहाँ जितनी चर्चाएं हुई वो बार बार चर्चाएं भी करवाते थे
जी जी,
तो मेरा मानना ये था कि जितना मैं उन लोगों से मिली तो मुझे लगता है कि उसमें से केवल 5% तो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, बाकी 95% जो हैं वो परिस्थिति वश और भावोद्वेग में अपराध कर रहे हैं
जी। ये बहुत सही बात मैम आपने कही, कई लोग ये बात कहते हैं कि किसी आवेश में आकर हो जाता है किसी से अपराध जी। ठीक कहा मैम,
मेरा क्या, जब मुझे वो लोग कभी ऐसा होता था कि उनको उद्बोधन के लिए भी कहते थे वो लोग, कभी कभी कुछ प्रोग्राम बनते थे, तो मेरा उनको कहना ये था कि जो जितने लोग यहाँ से जाएंगे जेल से, तो उन्हें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि उन्हें समाज शुरू में स्वीकार नहीं करेगा
जी,
लेकिन अगर उन्होंने अपना अपना व्यवहार अच्छा रखा, वो उन इस बात की चिंता न करें कि लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, अपना जीवन ठीक से जीते रहेंगे, तो धीरे धीरे उनके लिए स्वीकार्यता लोगों के मन में आ जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल,
हमें अपना उद्देश्य ये बना लेना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए जीना है।
बिल्कुल मैम, आपका जीवन देख के हमें यही प्रेरणा मिलती, आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, इतना काम आप कर रहे हैं मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। लेकिन अब आज के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगी, है ना, और हम लोग फिर से किसी समय फिर से आपके साथ में एक कार्यक्रम बनाऊंगी मैम, और किन्नर गाथा पर तो हम जरूर कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि एक ऐसा विषय, इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि इस विषय पर भी आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं, और आपकी पुस्तक वैसे भी इतनी चर्चित और प्रसिद्ध है तो इस पर एक समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। तो मैम आज के लिए आपका बहुत बहुत आभार, फिर हम मिलेंगे। प्रणाम मैम।